نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ زمر کو 42 آیت سے 60 تک، آپ نے دیکھا بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ یہ سورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلتی ہے، اور بہت ساری باتیں اس میں سیکھنے کی ہمارے لیے ہیں. پاورفل سورت ہے بہت. ہم آیت نمبر 42 سے شروع کرتے ہیں تفسیر. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو فوت کرتا ہے نفسوں کو، حین موتی ہے، ان کی موت کے وقت. یعنی یہ جو روحیں نکلنے کا عمل ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ کوستے ہیں کسی اور کو کہ کوئی اور ہے جس نے اس کا قصور ہو گیا، اس نے مار دیا، اس نے ایسے کر دیا. وہ الگ بات ہے کہ کس نے کس کو ختم کیا، قتل کیا یا کیا کیا، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت موت کا مقرر کیا ہو اس کو کوئی ٹالنے کی مجال نہیں رکھ سکتا. اللہ ہی ہے جو موت دیتا ہے، موت کے وقت روح قبض کرتا ہے. یعنی اللہ کرتا ہے مطلب ہے کہ اس کے فرشتے کرتے ہیں، سمجھا گئی بات؟ اس کی طرف سے جو اس نے مقرر کیے ہوئے فرشتے، وہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو فوت کرتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کی موت کا آنا، روح کا قبض ہونا. یہ کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالی کا اذن نہ ہو. اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دوسرا فرمایا، والتی لم تمت فی منامیہا، اور جو نہیں مرتے اپنی نیند میں، ان کی بھی روحوں کو قبض کیا جاتا ہے. ان کی بھی روحیں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہیں، مگر وہ جب نیند کے اندر ہوتا ہے تو اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک روح قبض ہوتی ہے کس وقت؟ موت کے وقت. دوسری ایوری ڈے بھی روح قبض ہو رہی ہے، وہ نیند میں ہو رہی ہے. کیونکہ موت کو جو ہم بولتے ہیں نا محاورتن کے، نیند موت کی بہن ہے یا موت نیند کی بہن ہے، جو بھی، تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ ٹوین ہے. ایوری ڈے ایک انسان ایکسپیرینس کرتا ہے اس بات کا کہ وہ یہ زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آس پاس سے ایسے بے خبر ہو جاتا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ارد گرد، کون کیا کر رہا ہے، کیا کچھ نہیں وہ جانتا. زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی مردہ ہے. تو اس چیز کا چونکہ ایکسپیرینس ہم روز کرتے ہیں، اور ہم جب صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، تو ہم اپنے منہ سے یہ بولتے ہیں. ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے موت کے بعد زندگی دی. کبھی اگر اس کو سوچ کے پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ واقعی ایک موت کی حالت میں میں چلی گئی تھی اور واپس آئی ہوں. جو نہیں مرتے ہیں ان کی نیند میں ان کی روح لی جاتی ہے، نیند میں روح قبض کر لی جاتی ہے. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے باس بعد الموت کی، اس لیے کہ یہ نیند چھوٹی موت ہے. اس سے اگر انسان اٹھ سکتا ہے تو ہر دن جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس میں ایک نشانی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسی طرح ہم اٹھیں گے. اور جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اٹھتے ہی بولیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، وہ پھر قیامت کے دن بھی جب اٹھیں گے تو انشاءاللہ ان کے منہ سے یہی نکلے گا، کیونکہ وہ ایک بڑی موت سے اٹھ رہے ہوں گے. تو ہر دن ہمیں ایک لیسن دیتا ہے एक बात समझा देता है, और वो क्या है कि जैसे तुम आज नींद से उठे हो ना, इसी तरह एक दिन मौत से भी उठोगे, ठीक है, इसी तरह तुम्हें अल्लाह ताला उठाएगा उस दिन। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब पर मौत वारिद होगी जैसे कि तुम पर रात होती है, फिर तुम सबको उठा लिया जाता है जैसे कि तुम उठा लिया जाएगा जैसे कि तुम सुबह को उठते हो, फिर तुमसे लाजमन हिसाब लिया जाएगा तुम्हारे आमाल का। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि पता नहीं दोबारा उठना है कि नहीं उठना, पता नहीं ये ऐसे ही बातें हैं या नहीं बातें, उनके लिए तो एवरी डे नहीं कोई सबक मिल रहा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, फयुम्सिकुल्लती कदा अलैहल मौत, रोक लेता है उसको जिसका जिसके ऊपर वो मौत का हुक्म दे देता है, मौत का फैसला कर लेता है, जिसकी मौत लिखी होती है उसकी रूह नींद में जब कब्ज कर ली जाती है तो उसके बाद वापस लौटाई नहीं जाती, ठीक है, वापस नहीं लौटाई जाती जिस्म में, क्योंकि उसका मौत का वक्त आ गया, उस वक्त सोया पड़ा था, तो अब उसकी जो रूह गई और उसके बाद फिर वापस नहीं आई। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की निशानी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, वर युरसिलुल उखरा इला अजल मुसम्मा, भेजता है दूसरियों को, कौन सी दूसरी, जो दूसरी रूहें हैं उनको एक मुकर्रर वक्त तक, वो भी हमेशा के लिए नहीं, रोजाना सो के उठना नहीं होगा, एक मुकर्रर वक्त तक, जब वो मुकर्रर वक्त हो जाएगा तो फिर रूह कब्ज कर ली जाएगी, फिर वापिस ही नहीं आएगी। इसीलिए आप देखते हैं ना, देखें बाज लोगों को सोए सोए, आपने भी सुना होगा कि मैं सोए और उसके बाद उठा ही नहीं, क्या हो गया जी, किसी ने कहा हार्ट अटैक हो गया, फलाना हो गया फलाना, अब वो तो बातें हमारी हैं, लेकिन असल बात यह है कि उसकी मौत का वक्त आ गया। जब मौत के लिए अल्लाह, जब उसकी रूह कब्ज कर ली गई, वो मुकर्रर वक्त हो गया, तो वापस नहीं लौटाई गई। इसी वजह से जब इंसान सोने लगे तो तौबा इस्तगफार करके सोए, कलमा पढ़ के सोए, अल्लाह का नाम लेकर सोए और दिल को साफ करके सोए, क्या पता है कि सुबह तक जिंदगी रहती है या नहीं। हर सुबह समझें, हर सुबह हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए ना, इसीलिए हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कितना शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्र है अल्लाह ने आज मुझे फिर एक जिंदगी और दे दी, क्योंकि मौत आई थी ना, ये आधी मौत आ चुकी थी मुझे, अल्लाह ताला मुझे चाहता तो इसी के अंदर मेरी जान कब्ज कर लेता, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी रूह को वापस लौटाया है तो मैं एक आधी मौत से गुजर के आई हूं, हर सुबह मुझे नई जिंदगी मिल रही है, नया दिन मिल रहा है, नई लाइफ मिल रही है। बाज लोग जब कोई किसी बड़े हादसे का शिकार होते हैं और उसमें जान उनकी बच जाती तो कहते हैं, आए मुझे तो नई जिंदगी मिली, अब तो मैं अपनी जिंदगी चेंज कर लूंगी। हम ये नहीं सोचते कि हमें एवरी डे नई जिंदगी मिल रही है, एवरी डे अल्लाह ताला हमें चांस दे रहा है कि आज फिर तुम्हें एक और मौका देता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को बदल लो, तुम वापस अल्लाह की तरफ मुड़ाओ। तो एवरी डे हमारा एक एक्सपीरियंस हो रहा है और एवरी डे का उठना हमें साबित कर रहा है कि अल्लाह ताला इसी तरह हमें उठा देगा। और जब हम उठते हैं तो ऐसे नहीं लगता कि अभी तो सोए थे बस, वो हम कितनी देर सोए होते, कितने घंटे, अब वो अगर घंटा कभी जागने की, अल्लाह रहम करे कभी बीमारी की रात होती है तो वो पता चलता है कि रात तो बड़ी लंबी होती है, लेकिन जब हम सो जाते हमें पता ही नहीं चलता, मिनटों सेकेंडों में ऐसे लगता है कि गुजर गई, ऐसे है ना। इसी तरह कयामत के दिन इंसान उठेगा तो उसको तो लगेगा कि इसमें मैं तो अभी तो मैं सोया था, मेरी आरामगाह से मुझे किसने उठा दिया, वो सदियों का वक्त भी कुछ भी नहीं लगेगा। तो इंसान को अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला फौत करता है जानों को जब उनकी मौत आती है, और कब किस वक्त फौत करता है, जब वो सोते हैं, जब उनकी नींद होती है। दूसरी बात क्या बताई यहां पे कि नींद के अंदर फिर कुछ जानों को अल्लाह रोकने का फैसला फरमा लेता है, वो भी उसका ही फैसला है, और कुछ को वापस भेज देता है। तो एवरी डे अल्लाह ताला हमें वापस भेजने का फैसला फरमाते हैं। एवरी नाइट जब हम सोते हैं तो हम उठते हैं तो अल्लाह ने एक और दफा फैसला दिया है मेरे लिए कि ये उठ जाए, अल्लाह तेरा शुक्र है इसके ऊपर। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस है कि जब तुम में से कोई बिस्तर पर सोने को जाए तो उसको झाड़ ले, ना जाने उस पर क्या कुछ हो, फिर ये दुआ पढ़े, बिस्मी का रब्बी वदातु जंबी, ए मेरे रब, ए मेरे पालने वाले, तेरे नाम की बरकत से मैं लेटता हूँ, यानी मैं अपना पहलू रखता हूँ, जंबी है ना अपना पहलू, वबी का अरफाऊ, और तेरी ही रहमत से मैं जागूंगा, इन अमसकता नफसी, अगर तू मेरी रूह को रोक ले, फरहमहा, तो अल्लाह उस पर रहम कर देना, वह इन अरसलता, और अगर तू उसको भेज दे वापस, जैसे यहां पे आया कि अल्लाह तला वह युरसिलुल उखरा, भेज देता है ना वापस कुछ को, अगर तू भेज दे फाफदहा, तो अल्लाह उसकी हिफाजत करना, बिमा तहफद बिही इबादक सालेहीन, जैसे कि तू अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है, अल्लाह उस तरह से फिर मेरी रूह की हिफाजत करना। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी दुआ है ना। तो ये दुआ भी हमें याद करनी चाहिए और पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर मौत आ गई तो फिर हमने बस दुआ मांग लिया कि अल्लाह तू ही हम पे फिर रहम करना। इन्ना फी ज़ालिका, बेशक किसमें, किसमें, इस नींद में रूह के जाने का और वापस आने का, या मौत के वक्त रूह का कब्ज़ किया जाना, ला आयात लिल कौमी यतफक्करून, इसमें बड़ी निशानियां हैं उस कौम के लिए जो गौर व फिक्र करती है। गौर करो तो इसमें कितनी बड़ी निशानी कि ये क्या सिलसिला हो रहा है। आप देखें, साइंस नहीं बता सकी आज तक कि ये क्या चीज़ है रूह, क्योंकि वो तो कहते हैं ना, जिस चीज़ को देख सकें, सुन सकें, फील कर सकें, कुछ महसूस कर सकें, वो ही चीज़ है, अदरवाइज तो साइंस की उसमें आती नहीं। अब रूह को वो कैसे डिफाइन करें, तो क्या चीज़ है जो निकल जाती है कि इंसान मर जाता है, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। नींद क्या चीज़ है जो हावी हो जाती है कि इंसान, कहते हैं सूली पे भी नींद आ जाती, वो क्या चीज़ है कि अच्छे भले बंदे को ऐसे बिल्कुल गाफिल करके रख देती है, बेबस करके रख देती है, मजबूर हो जाता है नींद के सामने। अब तक के लोगों को, जिनको मुजरिमों को टॉर्चर दिया जाता है, तो उनको जगाया जाता है, जगाया जाता है तो वो सारे राज उगल देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमें बस सोने दो। ये इतनी बड़ी इंसान के लिए निशानी है। ये भी कि देखे इंसान कितना बेबस है फिर अल्लाह के आगे, कि अपनी रूह को ना तो छुड़ा के वहां से ला सकता है, ना नींद के आगे बंद बांध सकता है कि ना आ सके। तो ये छोटे स्केल पे एवरी नाइट तुम एक्सपीरियंस करते हो मौत को, छोटे स्केल पे, और ये सोच लिया करो कि इसके बाद अगर मैं ना उठी तो क्या होगा। अमित तखदू मिन दूनिल्लाहि शुफा, क्या या उन्होंने बना रखी है अल्लाह के सिवा कुछ सिफारशी। अब जैसे कि मुशरिकीन का अकीदा था, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के करीब ये हमें करते हैं, और ये हमें अल्लाह तक पहुंचाने वाले हैं, और ये अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिशें कराएंगे, हमें वहां पे छुड़ा देंगे। तो इनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशें बना ली हैं। कुल अवलव कानू ला यमलिकूना शैअ वला याकिलून, कह दीजिए भला चाहे वो किसी चीज की भी मिल्कियत ना रखते हो, कोई अख्तियार ना रखते हो, और ना ही उनके अंदर कोई अकल हो, तब भी तुम इनको ही सिफारिशी बनाओगे। जब अकल उनके अंदर क्यों नहीं है, देखे ना, ना वो बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, कोई उनके अंदर अकल नहीं है, खास तौर पे बुतों की तरफ इशारा है ना, ना वो किसी चीज की मिल्कियत रखते हैं, ना कोई इख्तियार रखते, यहाँ पे तो वो किसी चीज के मालिक है नहीं, वो वहां पे अल्लाह के यहाँ जाके कयामत के दिन क्या छुड़वाते फिरेंगे। कुलिल्लाह, कह दीजिए अल्लाह के लिए, क्या अशफ़ातु जमीअ, सिफारिश सारी की सारी यानी अल्लाह के इजन से होगी, मन दल्लदी यशफाउ इंदहु इल्ला बे इजने, शिफात अल्लाह के हाथ में कुल्ली तौर पर, किसी को वो चाहेगा तो शिफात की इजाजत देगा, वरना कोई उसके सामने चूं तक नहीं कर सकता, आवाज नहीं निकाल सकता। और नंबर टू, दो चीजें हैं ना इसमें, एक तो ये मैंने आपको बता दी कि जिसको वो इजाजत देगा, नंबर टू जिसके लिए वो इजाजत देगा सिर्फ उसकी सिफारिश की जा सकेगी, ये भी उसी के हाथ में। दुनिया में सोचें, अगर कहीं किसी जगह नौकरियां खुलती हैं मसलन, अक्सर उसके लिए सिफारिशें कराई जाती हैं ना, तो मसलन है कि वो MA पास के लिए उन्होंने कहा है कि कोई मास्टर्स होना चाहिए जिसके लिए ये जॉब है। तो अब आप सोचते हैं कि इसकी सिफारिश कर दी जाए, जिसकी आप सिफारिश करने जा रहे हैं वो मैट्रिक भी नहीं पास, करेंगे क्या उसकी सिफारिश? आप कहेंगे तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है, कहाँ MA की उनको रिक्वायरमेंट है और कहाँ ये मैट्रिक भी नहीं पास है, तो मैं कैसे करूँ? ये भी तो एक शर्मिंदगी होगी, मैं किस मुंह से जाके सिफारिश करूँ? तो आप क्या सोचते हैं कयामत के दिन वो लोग जो कि कुफर में होंगे, शिर्क में होंगे या ऐसी कुछ गुनाहों के अंदर होंगे जो अल्लाह ने नहीं माफ़ करने हैं, कोई ऐसी बात है जिस वजह से अल्लाह ताला उनकी उनकी मग़फ़रत नहीं करने वाला, उनको जहन्नम में जाना है, तो उनके लिए कौन जुर्रत कर सकेगा कि वो अल्लाह के आगे बोले, जबकि उस दिन पैगंबर भी कांप रहे होंगे कि आज अल्लाह बहुत गजब में है। हम इतना भी नहीं कह सकते कि अल्लाह फैसला शुरू कर दे। लोग जब उनके पास जाएंगे, वो तवील हदीस आपने कई दफा सुनी हुई है कि लोग जाके पैगंबरों से सिफारिशें करने के लिए दरख्वास्त करेंगे कि आप सिफारिश करिए कि हमारे फैसला शुरू किया जाए, हम थक गए हैं, हम इंतज़ार में पड़े हुए हैं, अल्लाह से आप सिफारिश कीजिए। वो जिसके पास भी जाएंगे, चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो पहले इंसान जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक किया, या इब्राहिम खलीलुल्लाह हो, या मूसा कलीमुल्लाह हो, या ईसा अलैहिस्सलाम हो, कोई भी उस दिन इस बात पर भी तैयार नहीं होगा कि अल्लाह के सामने वो ये कह दे कि या अल्लाह फैसला शुरू किया जाए। सिफारिश तो लोगों की, ऐसे लोगों की, खराब लोगों की, मुजरिमों की करना तो दूर की बात है, उनके अंदर इतनी भी जुर्रत नहीं होगी कि वो ये कह सके। वो तो अपनी अपनी उनको भी पड़ गई होगी कि हमारे ये मेरी छोटी सी, अब हम उसको अपने हमारे उसके अंदर डिक्शनरी में तो वो गुनाह भी नहीं है, लेकिन वो अपनी इतनी सी छोटी सी खता को भी ऐसा सोच रहे होंगे कि ये हमसे हो गया दुनिया में, हम आज कुछ नहीं बोल सकते अल्लाह के आगे, अल्लाह ताला बहुत गजबनाक है इस वक्त। तो सोचें, क्या कोई सोच सकता है? अगर पैगंबरों की जरूरत नहीं है तो क्या कोई सोच सकता है कि कोई उठ के किसी का भी कह दे, अजी फलाने मेरे बड़े दर पे आते थे, फलाने मेरे पास बड़ी चादरें चढ़ाते थे, फलां मेरे पास मेरे नाम की नजरों न्याजें करते थे, मेरे आगे हाथ बांध के खड़े होते थे, तो अल्लाह इनकी सिफारिश कबूल, इनके लिए मेरी सिफारिश कबूल कर ले कि इनको तू बख्श दे, ऐसे कोई कह सकता है? तो सिफारिश उसी के लिए कोई करेगा जिससे अल्लाह खुश हो और जिसके लिए अल्लाह दिल में डाले। ऐसे तो आपको पता है पैगंबर भी शिफात करेंगे, वो भी इसलिए कि अल्लाह ताला का इज़न होगा। जब अल्लाह ताला जिस मौके पे जाके इजाजत देंगे कि अब करें, तब वो करेंगे। फरिश्ते भी सिफारिश करेंगे, लेकिन वो भी जिस वक्त के अल्लाह ताला का इज़न होगा। इसी तरह मोमिन भी सिफारिश करेंगे। ये मैं मुस्लिम की हदीस आपके सामने बयान करूंगी, और इससे आपको पता चलेगा कि हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि शायद शिफात सिर्फ मैदान हशर के अंदर ही है और उसके बाद तो कोई सिफारिश का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी होगी। इसीलिए तो मैं आपको कह रही, जिस वक्त भी अल्लाह चाहेगा तब होगी। लोग अपनी अपनी मर्जियों से नहीं करना शुरू कर देंगे कि हमारी मर्जी, अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुद, मेरी खलासी हुई नहीं हुई तो मैं दूसरों की सिफारिशें शुरू कर दूँ। वहाँ पर तो उस दिन बड़े बड़े लोग भी किस तरह से कांप रहे होंगे, कौन किसी की सिफारिश करेगा जब नफसी नफसी का आलम होगा? उस वक्त नहीं करेगा, बाद में वल्लाहु आलम किस वक्त किसको इजाज़त मिलती है, कब जाके किसके दिल में अल्लाह ताला डालते हैं और किसके लिए डालते हैं। तो कुछ बातें आपको इस हदीस से वाजे हो जाएंगी। हदीस है मुस्लिम की कि कुछ मोमिन, ये तवील हदीस है, मैं आपको एक हिस्सा बता रही हूँ, कुछ मोमिन जब जन्नत में चले जाएंगे, अब देखें क्या हो गया, जन्नत में जा चुके हैं, ठीक है, अब पता नहीं वल्लाहु आलम कितना अरसा गुजरा है जन्नत में उनको पहुंचे हुए, 100 साल, 200 साल, 300 साल, पता नहीं कब, जब भी, तो बाज वो जो जहन्नुम में गए होंगे उनके बारे में अल्लाह ताला से बातचीत करेंगे। वो कहेंगे कि उनके बारे में जो जहन्नुम में कुछ लोग चले गए हैं, तो उनके बारे में कहेंगे रब्बाना, ए हमारे रब, ए हमारे रब, जहन्नुम में कुछ ऐसे लोग चले गए हैं जो हमारे साथ रोजे रखते थे, हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे, हमारे साथ हज करे थे उन्होंने। अस्तग़फिरुल्लाह। तो जो लोग समझते हैं ना कि बस मुसलमान होना ही, कलमा पढ़ना ही काफी है और फिर सीधे सीधे हमने जन्नत में चले जाना है, ये देख लें, ये मुस्लिम की हदीस है कि वो रोजे भी रखते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, हज भी उन्होंने किए हुए थे, वो जहन्नुम में पड़े हुए। तो वो कहेंगे या अल्लाह, जहन्नुम में हम ये ऐसे लोग चले गए हैं जो हमारे साथ इसी तरह करते थे। तो उनसे कहा जाएगा ऐसे जिन लोगों को भी तुम पहचानते हो उनको निकाल लो, जहन्नुम में लोगों की सूरतें तब्दील नहीं होंगी, याद रखिए, चाहे चल जल के कोयला हो जाए लेकिन उनकी शक्लें पहचानी जाएंगी। तो ऐसे लोगों को ये पहचान लेंगे, और जो भी इनके दुनिया में साथी थे या जिनको वो जानते थे वो उनको निकाल लाएंगे, बहुत सारे लोगों को निकाल लाएंगे। इसी वजह से देखें कहा जाता है ना कि दुनिया में नेक दोस्त बनाए, नेक साथी बनाए, नेक लोगों के साथ अपना उठना बैठना रखें, क्योंकि ये फायदा होगा उस दिन कि अगर कोई जहन्नुम में चला भी जाए तो जन्नती लोग उसकी सिफारिश करेंगे। कब जाके करेंगे ये नहीं अब कुछ बताया गया यहाँ पे, लेकिन ये कंफर्म है कि करेंगे, ठीक है। तो उनकी सिफारिश का फायदा भी होगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे उनकी सिफारिश। इसीलिए वो वाली बात जो आती है ना कि हजरत हसन बसरी ने फरमाया अपने शागिर्दों से कि अगर तुम मुझे जन्नत में ना पाओ तो मेरे बारे में सवाल कर लेना, वो यही इसी हदीस से है ना बात। इब्ने कय्यिम ने फरमाया था कि अपने शागिर्दों से कि अगर तुम मुझे जन्नत में ना पाओ तो अल्लाह ताला से तुम कहना कि ऐ अल्लाह, एक बंदा हुआ करता था जो हमें तेरी याद दिलाता था, एक बंदा होता था जो हमें तेरी याद दिलाया करता था, और ये फरमा के रोने लगे। तो इससे पता चलता है कि लोग जो जन्नत के अंदर होंगे वो सिफारिशें करेंगे और वो सिफारिश करके उनको निकलवाने में कामयाब होंगे। तो बहुत से ऐसे लोगों को वो जहन्नुम से निकाल लाएंगे जिनमें से कुछ को आग निस्फ पिंडली तक जला चुकी होगी और कुछ को घुटनों तक। फिर वो कहेंगे ए अल्लाह, आपने जो हमें हुक्म दिया था तो हम जिनको जानते थे उनको निकाल लाए। अल्लाह ताला फरमाएगा अब जाओ, जिनके दिल में दीनार के बराबर भी खैर हो उसको भी जहन्नुम से निकाल लाओ। अब जिनको वो जानते नहीं होंगे मगर उनके दिल में खैर होगी, जिनका अल्लाह का इज़न होगा उनको भी वो निकाल लाएंगे। फिर कहेंगे या अल्लाह, आपने हमें जिनके बारे में खबर दी थी हमने उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको निकाल लाए, बहुत सारी खलकत को निकाल लाएंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ, दोबारा जाओ, जिसके दिल में आधे दीनार के बराबर भी खैर है ना उसको भी निकाल लो। फिर वो बहुत सारी मखलूक को और को निकाल लाएंगे, बहुत सारे लोगों को। फिर कहेंगे या रब, जिनके बारे में आपने हमें हुक्म दिया था उनमें से तो कोई भी नहीं हमने छोड़ा, उन सबको निकालना है। अल्लाह ताला फरमाएगा जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी खैर हो उसको भी निकाल लो। वो निकाल लेंगे और बहुत सारे लोगों को निकाल लाएंगे। फिर वो कहेंगे या अल्लाह, अभी तो एक खैर वाला बंदा भी नहीं रहा, सबको हम निकाल लाए जी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि फरिश्तों ने भी सिफारिश कर ली, नबियों ने भी कर ली, मोमिनों ने भी कर ली, अब तो अरहम और राहिमीन ही बाकी रह गया, यानी अल्लाह ताला खुद ही बाकी रह गया। फिर अल्लाह ताला एक मुट्ठी भरेगा आग से और ऐसे लोगों को भी निकालेगा जिन्होंने कोई खैर भी नहीं की होगी। वो वल्लाहु आलम उनके अंदर क्या चीज़ होगी कि अल्लाह ताला उनको निकालेगा, यानी उनके अंदर हो सकता है कि ईमान हो लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं नेकी कभी की हुई, वल्लाहु आलम। और जन्नत के दरवाज़ों के पास एक नहर होगी जहाँ उनको डाला जाएगा, वो नहर हयात कहलाती है, उसमें उनको डाला जाएगा, वो जल के कोयला हो चुके होंगे, यानी बिल्कुल जल चुके होंगे। अब वो जब इस नहर के अंदर जाएंगे साफ हो जाएंगे और फिर उसके बाद इनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फिर ये लोग जन्नत में उतकाउल्लाह कहलाएंगे, अल्लाह के आज़ाद करदा। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, ये तो कुछ ईमान वाले होंगे जिनको निकाल लिया जाएगा। अल्लाह ताला अरहमर रहमीन अपनी मुट्ठी भरेगा ना आग में से, और वो उसमें कितने लोग होंगे सोच सकते हैं आप, वो सब फिर जन्नत में दाखिल होंगे। लेकिन ये कब होगा इसकी तफसीलात अल्लाह ही बेहतर जानता है। कब जाके जन्नतियों के दिल में ये ख्याल आएगा कि वो हमारे साथी कहाँ हैं जो हमारे साथ नमाजें पढ़ते थे और ये करते थे, ये कब होगा वल्लाहु आलम। कितनी देर तक वो जहन्नुम में जलते रहेंगे वल्लाहु आलम। नबी नबी अंबिया भी जिनकी सिफारिश कराएंगे सिफारिश करेंगे, बाज़ की शिफात उस वक्त होगी जबकि लोग जन्नत में जा चुके होंगे, तो तब शिफात अंबिया कराएंगे और वो निकलेंगे वहां से। तो इस चीज के ऊपर भरोसा करके बस बैठ जाना तो कोई तो हमारी सिफारिश कर ही लेगा, हम एक दिन तो निकल ही जाएंगे, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। बल्कि वो अमल करने चाहिए कि कभी जहन्नम में जाना क्या उसको देखना भी ना पड़े, इस चीज की दुआ करनी चाहिए। ना डर हो के ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ कोई बात नहीं है, ऐसा तो अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं। रहम फरमाए। लहू मुल्कु समावाति वल अर्द, लिए उसी के है बादशाहत आसमानों की और जमीन की। जब बादशाहत उसी की है, वो जिसको चाहे इजाजत दे, जिसको चाहे ना दे, जिसको चाहे जिस वक्त भी निकाले। सुम्मा इलैहि तुरजाउन, तुम उसी की तरफ पलट के जाने वाले हो, तुम पलटाए जाओगे उसकी तरफ। ये याद रखना, हमेशा यहां नहीं रहना है। कुरान कितनी मर्तबा हमें याद दिलाता है, कितनी दफा याद दिलाता है कि वापस जाना है, वापसी है, लौटना है। लेकिन यही एक बात है जो सबसे ज्यादा जल्दी हमारे जहन से महव हो जाती है। वाइदा जुकिर अल्लाह, और जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, अल्लाह वो वाहदहू का, अकेले उसी का जब जिक्र किया जाता है, यानी अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र जब होता है, तो उस वक्त क्या होता है, इश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लदीन ला युमिनूना बिल आखिरा। तो उन लोगों के दिल जो आखरत पर ईमान नहीं रखते, यानी उनका ईमान नहीं है आखरत पे, लौटने पर, बास बादल मौत पर, उनके दिल नफरत करती हैं, सुकड़ने लगते हैं। अल्लाहु अकबर, कुफारे मक्का का तो हाल ये था ना कि जब उनके बुतों का जिक्र किया जाता तब तो उनके दिल बड़े खुश होते थे, लेकिन जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता, इससे पता चलता है ना कि अल्लाह को मानते तो थे लेकिन अकेले अल्लाह का जिक्र नहीं अच्छा लगता। जैसे आज भी आप लोग भी सब जानते हैं, जो लोग वो शिर्क भी करते हैं फिर आखिर में कहते हैं नहीं जी एक ऊपर जात तो एक ही है ना, फिर इसीलिए हमारे कई मुसलमान इस चीज को जस्टिफाई करते हैं, नहीं जी मानते तो वो भी एक ही खुदा को है असल में, तो वो इधर उधर दूसरों को साथ शरीक करते लेकिन असल मानते वो भी एक को ही है। तो भाई उस मानने को क्या करना, वो तो मुशरिकीन मक्का भी मानते थे। वो मानना काफी नहीं, जब तक कि शिर्क से पाक ना हो जाए इंसान का ईमान, ये काफी नहीं है कि बस हाँ एक है बड़ा। वो तो सिखों को भी पूछ लो, हिंदू को भी पूछ लो, दूसरों को भी, क्रिश्चियन को भी पूछ लो, तो वो फादर तो कहते हैं कि एक फादर, अस्तगफिरुल्लाह। तो जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता था तो उनके दिल नफरत करते थे, कि क्या आज भी कुछ लोगों को देख लें आप, तौहीद की बात शुरू करें, आप ये शुरू करें तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि एक पता नहीं एक ही टॉपिक लेके बैठ जाते हैं, शिर्क के ऊपर बताना शुरू कर देते हैं, ये बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है। अच्छा कहाँ, जब आप कुछ शुरू कर देंगे ना, कोई किसी की कहानियां स्टोरी शुरू कर दें तो फिर देखें फिर बड़े दिल उनके खुश होते हैं। इसी को बात को आगे कहा गया, वा इजा जुकिर अल्लज़ीन मिन दूनी, और जब जिक्र किया जाता उसके अलावा, किसके, अल्लाह के अलावा, इजा हुम यस्तबशिरून, तो वो खुश हो जाते हैं। आप रख लें कोई करामतों का दर्स के सब किस्से कहानियां, करामतें फलाने बुजुर्ग की फलां की, तो देखना फिर कितने खुश होते हैं, वो बड़ा मजा आया इसमें। तो मुशरिक या काफिर तो गैर अल्लाह के जिक्र के ऊपर खुश होते ही थे कि उनके लात मनात उज़ा उनकी बातें करो तो बड़े खुश होते थे, लेकिन मुसलमानों में भी गैर अल्लाह के तस्करों पर खुश होने वाले हैं, ये बड़ी अजीब बात लगती है लेकिन वाकई ऐसा है। आप देखें फलां पीर पीर हैं, फलां वो हैं, उनकी आप बातें लेके बैठ जाएं, आप देखेंगे सबको बड़ा मजा आएगा। फलां दरगाह पे ऐसा होता है, फलां जगह में ऐसा किया जाता है, आप उधर तावीज धागा बांधे, ये हो गया, फिर फलाने की ख्वाब के अंदर आ गए, फिर ऐसे हो गया, फिर उन्होंने फलान वक्त में उनके साथ ऐसा हुआ था तो उन्होंने ये कहा था आगे। तो ये स्टोरीज बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर कुरान आप खोल के बैठ जाएं, इसमें से तौहीद का जिक्र शुरू कर दें, फिर देखें तो मजा उनको कहाँ आता है इन इन वाकयात में। इसलिए कि जो बस उसके अंदर क्या है, झूठी सच्ची कहानियां मिला के, वो कौन सा कुरान है जो सारे अल्लाह ताला ने कोई महफूज किए हैं उनके किस्से कहानियां, कि उनके अंदर जरा भी रद्दो बदल नहीं हुआ, वो कुरान थोड़ी है। आप आगे से आगे एक से दूसरे को भी बात बताते हैं ना, तो जब तक पांचवें बंदे तक पहुंचती है बात कुछ की कुछ बन चुकी होती है। तो किस्से कहानियां ये चले आ रहे हैं इतने जमानों से, आप बीबी फातिमा की कहानी लेके बैठ जाएं, वो उनकी वतनी और की 10 बीबियों की कहानियां ये लेके बैठ जाएं, तो सारे मजे से आ जाएंगे, जमा हो जाएंगे। एक अल्लाह का जिक्र करने लगोगे तो सबको मसले। ये इंसान को पता चलता है, देखें जिससे मोहब्बत होती है ना, जिक्र उसी का अच्छा लगता है। अब दिल के अंदर किसकी मोहब्बत ज्यादा है ये खुद पता चल जाता है। और ठीक है, अगर कुछ लोग तो खैर इस तरह से हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, के इतने ज्यादा दीन से एलर्जी है उनको, अल्लाह रसूल के नाम से उनको एलर्जी है, कि आप किसी के जिक्र के लिए बुला लें या एक मजलिस कर लें जिसमें के कोई और भी किसी भी पर्सनैलिटी को डिस्कस किया जा रहा है, कोई मुशायरा हो रहा है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें कोई फन या वो हो, तो फिर देखें कि कितनी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। बल्कि आपको फोन कर कर के वो शिकायत करेंगे, गिला करेंगे कि हमें नहीं आपने बुलाया, हमारी याद नहीं आपको आई, हमें भूल गए आप। लेकिन आप वही अल्लाह के जिक्र की मजलिस रखें तो कि जो आने वाले हैं जिनको इनवाइट भी किया होगा वो भी बहाना करके इधर उधर हो जाते हैं। इतना फर्क पता चलता है ना कि हमें किस चीज का शौक है और किस जिक्र को सुनने की हमारे दिल के अंदर तड़प है। जिनके दिलों में आखरत पे यकीन होता है ना, उनका तो हाल ये होता है कि कहां से हमें कोई अल्लाह की बात मिल जाए, कहां हम अल्लाह की कोई उसके हुक्म को सुन लें या जिस चीज से उसने मना किया उसके बारे में जान लें। आखरत का ईमान इंसान को सीधा कर देता है, लेकिन जब इस ईमान को दीमक खा जाती है ना, तो फिर ये हाल होता है कि अल्लाह की बातें अच्छी नहीं लगा करती। वो मसला पीछे क्या है, मसला पीछे ईमान में है, ऐसे नहीं है कि कुछ और प्रॉब्लम है, मसला ईमान में, आखरत पर ईमान नहीं है। तभी तो वो ऊपर कहते हैं कि क्या आखरत की हर वक्त बातें लेके बैठ जाते हो, इनके पास एक ही टॉपिक है बस, कयामत का, ये इसका उसका, जन्नत जहन्नम, यही बस डिस्कस करते रहते हैं, उनको अच्छे नहीं लगते ये बातें। आप इसी से थोड़ा सा देख लें, कुछ लोगों ने आजकल ये शुरू किया हुआ कि चलो जी पहले अल्लाह का नाम ले लो, फिर उसके बाद खूब गाने बजाने और ये करो, तो जितनी देर अल्लाह का नाम लिया जा रहा होता है लोग बस पहलू बदल रहे होते हैं, कब खत्म करेंगे ये, तो हम अपना फन शुरू करें। जो ही दो दूसरा ये खत्म हुआ, फन का टाइम शुरू हुआ, फिर देखे चेहरे खिल जाते हैं, सबको इतना मजा आ रहा होता है, सब खुश हो रहे होते हैं। अल्लाह के अलावा दूसरी चीजें हमें खुश करने लगे तो समझ लें ईमान के अंदर, ईमान बिल आखिरा में मसला है, प्रॉब्लम आ गई है कुछ। कुल, अब ये भी बहुत जबरदस्त आयत है, और ये ऐसी आयत है कि इंसान इसको याद करे, क्योंकि इसी से आगे एक दुआ भी है। और ये सईद बिन जुबैर फरमाते हैं कि मुझे कुरान की ऐसी आयत मालूम है कि उसको पढ़कर आदमी जो भी दुआ करता है वो कबूल होती है। ये सईद बिन जुबैर जो है ना, ये उनकी अपनी ये एक बात है कि वो ये फरमाते हैं। तो ये आयत क्या है, कुल कह दीजिए, ए नबी आप बता दें, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, फातिर समावाति वल अर्द, पैदा करने वाला आसमानों का और जमीन का, आलिम अल गैब, जानने वाला गैब का और हाजिर का, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھا دی ہے. یہ دعا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں, جیسے قل رب زدنی علما, اے میرے رب کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو اسی طرح ہم نے قل حسبی اللہ پیچھے کی اس میں آیات میں یہ پڑھا تھا سبق میں کہ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو یہ بعض جگہ پہ قل کہہ کے کہا جاتا ہے. یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس بات کو ایمفسائز کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سارا قرآن انہی کی زبانی ملا, لیکن جب اللہ تعالیٰ فرما دے نا قل, تو اب اور زیادہ ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اب کوئی اہم بات آ رہی ہے. اور پھر آگے دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے, اس لیے کیونکہ جو کافر کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشرائز کر رہے تھے, کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہارڈ ٹائم دے رہے تھے. تو اے اللہ تو پیدا فرمانے والا آسمانوں اور زمین کا, اگر انسان آسمانوں اور زمین کی اوپر غور کر لے تو وہ اچھی طرح جان سکتا ہے کہ جو اس کو پیدا کرنے والی ذات ہوگی وہ ذات کیا ذات ہوگی جس نے ان کو پیدا فرمایا. آسمانوں اور جو کچھ آسمانوں میں, آج تک آسمانوں کی وسعتوں کو انسان پہنچ نہیں سکا ہے جو, لیکن انسان یہ جانتا ہے کہ کہاں تک ان کی یعنی آسمان کہاں تک پھیلے میں, یعنی آسمان سے مراد یہ کیا ہے, جتنی بھی گیلیکسیز ہیں جتنے بھی یہ سارے سسٹم ہیں آگے سے آگے, ان کی ڈیپتھس کو سمجھنا تو دور کی بات, ان کی بیسک انفارمیشن بھی آج تک انسان نہیں پا سکا. بس یہ جان سکا ہے کہ ہاں ہاں فلاں ستارے سیارے اتنی اتنی دور ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وہ کہاں, وہاں پہ کوئی مخلوق ہے یا نہیں, کچھ کچھ بھی چیز انسان وہاں تک نالج پا ہی نہیں سکا. جو رب اتنی بڑی کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے اور اس زمین کو پیدا فرمانے والا ہے, جو علم رکھتا ہے نہ صرف غیب اور حاضر کا, ہر چیز یعنی حاضر کو تو ٹھیک ہے ہم سوچتے ہیں کہ حاضر ہم بھی سامنے اپنے یہ جو چیزیں ہم بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں, ہم ایون حاضر کا بھی پورا احاطہ نہیں کر سکتے کیونکہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھنے کی حد تک ہے, ہمیں نہیں پتا جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ واقعی ویسا ہے بھی یا نہیں. کتنی دفعہ ہی ہم خود کہتے ہیں نا, اچھا میں نے تو یہ سمجھا تھا, اچھا یہ چیز ہے, اچھا دور سے تو ایسی نظر آ رہی تھی. علم ہونا کسی چیز کو اور صرف دیکھ لینا, ہم سوچتے ہیں ہمیں بھی تو پتا ہے, ہم بھی تو جان رہے ہیں. آج کل انسان نے بڑا ترقی کر لی ہے, وہاں تک جانتا ہے, وہ وہاں تک جانتا ہے, اس کو یہ نہیں پتا آئے دن نئی سے نئی اس کی بھی ریسرچز ہو رہی ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ جو پہلا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, اب ہمیں سمجھ آئی ہے, پھر پتا چلتا ہے نہیں نہیں وہ بھی صحیح نہیں تھا جس کو ہم سمجھ رہے تھے صحیح, اب کچھ اور سمجھ آ گئی. انسان حاضر کا بھی جاننے والا نہیں ہے, یاد رکھے, غیب تو دور کی بات ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو انسان کی سوچ ہے یہ کیا چیز ہے, کہیں نظر آتی ہے, کہیں چھو سکتے ہیں آپ, کہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو, خیال, میں کہتی ہوں میرے ذہن میں خیال آیا, خیال کا کیا چیز ہے, تو ایبسٹریکٹ سی چیز ہے نا, کہاں پہ ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اس کی کیا فارم ہے, کیا شکل ہے, کچھ نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ان چیزوں تک کو جانتا ہے, اور غیب کی دنیا کیا ہے اس تک تو خیر ہمارا بالکل ہی ہمیں نہیں پتا. آپ دیکھ لیں ہم اپنے سامنے مردوں کو دفناتے ہیں, اپنے سامنے دفناتے ہیں, اسی زمین میں ہی ہے نا, کہیں اور تو نہیں چلے گئے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم نہیں جان سکتے, ہم نہیں جان سکتے ان کی آگے کی ان کی منزلیں کیا ہیں, ان کے اوپر اس وقت کیا گزر رہی ہے, یہ سب غیب کے معاملات ہیں. پھر یہ تو چھوٹی سی مثال میں اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ ہمارے سامنے وہ پڑا ہوتا ہے لیکن ہم نہیں جان سکتے وہ اس وقت کیا کہنا چاہتا ہے, کیا ہے اس کے اوپر, کیا فیلنگ گزر رہی ہیں, وہ ہم نہیں جانتے. روح کیا چیز ہے ہمیں نہیں پتا, ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں روحوں کے ساتھ, ہم نہیں جان سکتے اس کی حقیقت. تو انسان کا علم ناقص ترین ہے, پھر بھی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس کو کوسچن کروں جو عالم الغیبی و شہادہ ہے, انسان یہ سوچتا ہے.
हद तो ये है कि इंसान अपने जिस्म के मुतल्लिक भी नहीं जानता, अपने जिस्म में क्या कुछ है वो तक नहीं जानता, और तो दूर की बात है, जिसको वो सारा दिन इस्तेमाल करता है उसको ये नहीं पता मेरे अंदर कौन सी बीमारी जड़ पकड़ रही है, कौन सी बढ़ रही है, कौन से जरासीम चले गए हैं, ये बीमारी कैसे क्योर होगी, क्या कुछ नहीं पता। तो अल्लाह ताला की ये सिफात बयान फरमा के, अंत तहकुम बैना इबादिका, तू फैसला करेगा, तू ही फैसला करने वाला है अपने बंदों के दरमियान, फी मा कानू फीही अख्तलिफून, उसमें जो इख्तलाफ करते हैं, जिसमें बाज मामलात ऐसे हैं कि दुनिया में उनका फैसला नहीं हो सकता। आप कितना भी चाहें दूसरा बंदा कन्विंस ही नहीं होता, वो उसने वो कहता मैंने मानना ही नहीं, मानना ही नहीं, तो अब आप कैसे मना सकते हैं उसको जो मानना ही ना चाहे। इन सारे इख्तलाफात के फैसले आप देख लें, चाहे डिफरेंट मजाहिब के दरमियान है, चाहे फिरकों के दरमियान है, ये सब फैसले अल्लाह के यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी ने ठान लियो कि मैंने मानना ही नहीं, तो उसको फिर आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, दलाइल दे भी दें, वो नहीं मानता, और वहां पे जाकर सब इख्तलाफात खुल जाएंगे। तो ये जो बात है इसी के ऊपर इस आयत से ही एक दुआ है, ये दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में दुआए इस्तफ्ताह के तौर पे पढ़ते थे। दुआए इस्तफ्ताह मतलब क्या होता है? अच्छा, जैसे हम सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका पढ़ते हैं ना, यानी अल्लाह अकबर कहते ही जो दुआ करते थे, बहुत जबरदस्त दुआ है, उसके अंदर ये आयत भी है उसके अंदर, यानी ये समझ लें। तो वो दुआ क्या है, मुस्लिम में आती है, अल्लाहुम्मा रब्बा जिब्रीला व मीकाईला व इसराफीला, ए अल्लाह तू रब है जिब्राइल मीकाईल इसराफील का, बड़े बड़े फरिश्तों के नाम। अब आगे देखें, यही जो आयत है, फातिर अस्समावाति वल अर्द आलिम अल गैबी व शहादा अंत तहकुम बैना इबादिका फीमा कानू फीही यख्तलिफून, ये सारी आयत यही वाली है, ठीक है। एहदिनी, इसके बाद फिर आप दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मुझे हिदायत दे दे, लिमख्तलिफा फीही मिनल हक भी इज़्निका, उसके उस चीजों में जिस चीज में इख्तलाफ किया गया अपने फजल से, इन अपने फजल से यानी मुझे राह हक दिखा दे, मुझे हिदायत दे दे, इन्नका तहदी मन तशाउ इला सिरात मुस्तकीम, तू जिसको चाहे हिदायत दे सीधे रास्ते की तरफ। तो इसमें फिर आप दुआ मांगते, कितनी अच्छी दुआ है कि इंसान उठते ही ये दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे हिदायत दे देना, जिसमें लोग इख्तलाफ करते हैं, जिस चीज में भी इख्तलाफात हैं, अल्लाह मुझे हक दिखा देना उसके अंदर। और आप पहले ये जो अल्लाह ताला की सिफात है ये बयान करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा इस दुआ को पढ़े अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने फरिश्तों से फरमाएगा, मेरे इस बंदे ने मुझसे अहद लिया है, इस अहद को पूरा करो, ठीक है, इसलिए मुझसे हिदायत मांगी थी ना, सही रास्ता मांगा था, गाइडेंस मांगी थी। तो इसलिए इस आयत को कोशिश कीजिए कि आप वैसे तो बिल्कुल आसान है इसके अल्फाज, कोशिश कीजिए कि इसको आप भी दुआए इस्तफ्ताह के तौर पे पढ़ें। वलौ अन्ना लिल्लदीना ज़लमू, और अगर बेशक वो लोग जिन्होंने जुल्म किया, मा फिल अर्दी जमिया, जो जमीन में है सारा का सारा, उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, लिल्लदीना लिए उन लोगों के जिन्होंने जुल्म किया, उनके लिए जितना कुछ भी हो, जितना भी जमीन में है सब कुछ हो, वह मिथलाहू माहू, और इसकी मिसल भी हो, जितना जमीन में है उस जैसा, और मसलन है जितना कुछ जमीन में हो उतना ही और भी उनको दे दिया जाए। अव्वल तो ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जिसके पास इतना कुछ हो कि पूरी जमीन में जितना कुछ है वो सारा उसका हो, सारी जमीन की दौलत उसकी हो, और कहां ये कि उसकी मिसल और भी, मिसल एक और जमीन हो जिसमें भी उतना कुछ हो। अगर किसी के पास मसलन हो भी जाता है, अगर कहा गया ना, अगर बेशक जिसने जुल्म किया, मसलन कोई आदमी है जिसके पास इतना कुछ है, इतना माल और दौलत है कि पूरी जमीन के बराबर है, तो और उसके मिसल और भी है, तो क्या होगा, لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. تو البتہ وہ فدیے میں دے دیں اس کو من سوء العذاب، عذاب سے بچنے کے لیے یوم القیامت. تو ایسے لوگ کیا کریں گے قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے؟ وہ اس سارے کو دینے کو تیار ہو جائیں گے قیامت میں. تو کیا ہم تو اس دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے، کہ ہماری جان بچ جائے، اپنی ساری دولت لٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر انسان کو، بلکہ بیماری تو کیا، اگر انسان کو بھوک لگے، پیاس لگے، وہ بھوک پیاس کی شدت میں پہنچ جائے تو اپنی ساری دولت دے کر ایک نوالا، ایک گھونٹ پانی لینے کو تیار ہو جائے گا. استغفر اللہ. تو یہ حال ہوگا قیامت کے دن کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، یعنی شرک کیا. اسی قسم کی آیت سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ اگر وہ چاہیں گے زمین بھر کے، اب خزانے دینا بھی چاہیں گے، سونا دینا چاہیں گے، زمین بھر کے مال دینا چاہیں گے، کچھ بھی دینا چاہیں، قبول نہیں کیا جائے گا. دیکھیں اس دنیا میں تو اگر انسان ذرا سا صدقہ بھی کرے نا، تو وہ صدقہ بھی کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے. یعنی اس سے، حدیث سے سمجھیں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کو آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجور دے کے بھی، یعنی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، تو آدھی کھجور ہے تمہارے پاس، وہ بھی صدقہ کر دو، اس کے ذریعے ہی آگ سے خود کو بچا لو. اور امیجن کریں کہ وہاں پہ ساری دنیا بھی کوئی آفر کرے، دینا چاہے، تو قبول نہیں ہوگی. ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آدھی کھجور بھی قبول کر لے گا، کفر کے ساتھ آخرت میں پوری دنیا بھی دے گا تو نہیں قبول ہوگی. اس لیے کہ دیکھیں ایک یہ بھی فرق ہے نا کہ جب سامنے سب کچھ دیکھ لیا پھر کچھ نہیں رہ جائے گا، پھر بڑی سے بڑی آفر بھی ریجیکٹ ہو جائے گی. اور یہاں پہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، یعنی کھجور کیا اس کی، کتنی چھوٹی سی چیز، اور آدھی کھجور تو اس سے بھی کیا اس کی ویلیو ہے، اتنا کا بھی صدقہ اگر آپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کر لیتا. ایک کھجور بھی صدقہ کی ہوگی تو لوگ جنہوں نے سنسیریٹی سے کی ہوگی، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو پال کے احد پہاڑ کے برابر کر دیا. یہ اندازہ کیجئے کہ اگر دنیا میں انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو کتنا بڑا نفع ہے. آخرت میں جا کے بڑے سے بڑا کام بھی کرنا چاہے گا تو وہ بیکار ہے. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ کافر ہیں، یہ ہیں، یہ، لیکن بڑے اچھے ہیں، یہ تو جنت میں چلے ہی جائیں گے نا. انہوں نے ساروں نے جنت کو کتنا آسان معاملہ سمجھا ہوا نا، کہ جب سے سارے ہی بھیڑ چال ہے جس کا ہمارا دل چاہتا ہے چلے جائیں گے. حالانکہ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی پوری دنیا کی دولت بھی لٹانا چاہے تب بھی نہیں جا سکے گا. آسان نہیں ہوگی جنت. جو جنت اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے، محنت کرنے والوں کے لیے بنائی ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ ایسے ہی نہیں لٹاتا پھرے گا کہ جو مرضی لے لے، جو مرضی دھکے دے کے اندر داخل ہو جائے. آج یہ سوچنا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، سب کو مل جانی ہے، اور وہ بھی جو شرک کرے اس کو بھی، اور وہ بھی جو نہیں، سب مانتے تو ایک کو ہی ہے نا، کوئی بات نہیں. یہ وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، ریالٹی ایسے نہیں ہے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جو نہ تھے وہ حساب رکھتے، جس کا ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. ہمارے جو اسلاف تھے نا، وہ اس بات کو پڑھ کے زارو قطار رویا کرتے تھے کہ، یعنی طبری جو ہیں مفسر قرآن، اپنے بستر مرگ پہ ہیں اور یہ تلاوت فرما رہے ہیں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ چیزیں سامنے آئیں گی جن کا کبھی گمان بھی نہیں تھا. انسان نے سوچا ہاں وہ جی وہاں پہ جنت میں ہم ایسے چلے جائیں گے، ایسے ہو جائے گا، वो तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि ये यहाँ पे ये कुछ सब होने वाला है। वो समझे थे कि भाई इधर हमने मरना है, उधर जन्नत के फरिश्ते वेलकम करेंगे। सारों का यही ख्याल है, वो सब ही अपने मरने वालों के बारे में यही समझते हैं। कोई कितना ही बुरे से बुरा हो, हर कोई कहता है जी हमारे तो जन्नत नहीं है। कोई गाफिल से गाफिल मुसलमान हो, कोई शिर्क करने वाला मुसलमान हो, या कोई हिंदू ईसाई यहूदी कुछ भी, सब समझते हैं कि बीच सब हमारे जन्नत में चले गए। और यहाँ पे आयत क्या कह रही है, ये अभी तो जाहिर है विशफुल थिंकिंग्स हैं सबकी, अपने ख्यालात हैं, सोच है, जो भी सोचते रहे। हकीकत तो तब खुलेगी ना जब इंसान की इधर से आंख बंद होगी, तब वो चीजें जाहिर होंगी जिसका उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। नो क्लू, पता ही नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। आज तो कह देते ना लो तो तुम लोगों ने क्या हवा बनाया हुआ है, तुम लोग क्या डरावे की बातें करते रहते हो, तुम लोग क्या ये कहते हो कि इस तरह से वो नहीं जा सकते और काफिर नहीं जन्नत में जा सकता, ये कैसी बातें हैं, इतने नेक है वो, तुम मुसलमानों से तो ज्यादा अच्छे हैं ना। तो ये सब चीजें खुल जाएंगी, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी व बदा लहुम, और जाहिर हो जाएगी उनके लिए सय्यातुमा कसबू, सजा उसकी जो उन्होंने कमाई की, वो सजाएं भी जाहिर हो जाएंगी। वो चीजें सामने आएंगी जिनका अंदाजा ही नहीं था कभी, वो जो गलत काम किए और सोचते रहे कि हाँ जी पता नहीं हम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, शेयर करके सोचते रहे कि हम बड़ी नेकियां कर रहे हैं, इनके ऊपर बुतों पे चढ़ावे चढ़ा के, यहाँ पे नजरें न्याजे मांग के, गैर उल्लाह के नाम पे कुर्बानियां करके, गैर उल्लाह से दुआएं करके, हम सोचते रहे कि बहुत अच्छे काम हो रहे। तो वहां पे जाके बुराई का बदला सामने आ जाएगा जो उन्होंने खुद कमाई की है। वहां का भी हिम्मा कानू भी यस्तहज़ीनू, और घेर लेगी उनको जो थे इसका मजाक उड़ाते। ये सब उनको मजाक की चीजें सूझती थी ना, अजाब क्या लेकर आओ अजाब, अगर अजाब है तो फिर लाओ, लाते क्यों नहीं, इन सब का मजाक करते थे ना। वही अजाब उनको घेर लेगा, वही जिसको नामुमकिन समझते थे कि कभी नहीं आ सकता, जिसको जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। देखिए अगर जन्नत की नेमतें ऐसी हैं ना जिनके बारे में हमने सुना है, ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी, तो जहन्नुम के अजाब भी ऐसे ही हैं। अल्लाह के अजाब भी इस दुनिया में इंसान उनको इमेजिन नहीं कर सकता, ना कभी देखा ना सुना, क्या दुनिया के अंदर मैक्सिमम भी क्या अजाब हो जाएगा। और कहां वो अजाब है जो गिसलीन का है, जो जकूम का है, जो उस आग का है जो जलाती भी है लेकिन फिर भी मौत नहीं आती। वो अजाब आप दुनिया में तो नहीं देख सकते, कौन सी ऐसी आग है दुनिया में जो जलाए और फिर मौत ना आए इंसान को। थोड़ा सा भी कोई, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह दुनिया और आखरत की आग से बचाए, कि जरा सा भी दुनिया में कोई थर्ड डिग्री बर्न हो जाए तो वो जिंदा नहीं बच सकता। उस आग का आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं दुनिया में। वहां पे इंसान जब जाएगा तो तब समझ आएगी कि ये तो कुछ और, हमने क्या समझा और निकला कुछ और। फायदा मसल इंसान दुर्रन, लेकिन इंसान का हाल क्या है इस दुनिया में कि जब छू जाती है उसको तकलीफ, दआना वो पुकारता है हमको। ये मौजू कई दफा कुरान करीम में आ चुका है कि इंसान का, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, जिस वक्त तकलीफ उसके ऊपर आती है वो फिर उसकी हालत ये हो जाती है कि बहुत अल्लाह को पुकारता है, बड़ी अल्लाह के आगे फरियादें करता है, चिल्लाता है, दुआएं करता है। सुम्मा इजा खव्वलना हो नियामत मिलना, फिर जब हम अता करते हैं, खौल चढ़ जाता है हमारी नेमत का उसके ऊपर, हमारी नेमत उसको लपेट लेती है, नेमत का गिलाफ चढ़ जाता है उसके ऊपर, तो क्या कहता है, काला इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, कहता है फिर आगे से ये सब तो मेरे इल्म की वजह से मुझे मिला, ये तो आपको नहीं पता हमने बड़ी प्लानिंग की, ये तो मैंने इतनी आखिर मेहनत की थी, मेरी तो मैं तो बड़ी आगे तक देख लेता हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट ही ऐसी जगह की थी। सारी बात को अपने ऊपर क्रेडिट ले लेता, मैंने ये स्टेप उठाया, मैंने मौके का फायदा उठाते हुए उस वक्त ही ये स्टेप लिया था, मुझे पता था कि यही होना, यानी तुम्हारा इल्म इतना ज्यादा है कि तुम्हें ये पता, तुम चीजों को फोरसी कर लेते हो। या दूसरा माना ये भी है कि मेरा ही इल्म इतना है कि मेरे इस वजह से ही मुझे मिला, जैसे कि कारून ने कहा था قارون کی بھی تو یہی بات تھی نا، وہ کہتا تھا کہ یہ سب میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، مجھے تو اب یہاں آج بھی لوگ کہتے ہیں مجھے پتا تھا مجھے تو ملنا ہی ہے، یعنی میرا علم اتنا ہے مجھے پتا ہی تھا، میں تو ڈیزرو ہی کرتا ہوں. آج انسانوں کا کیا یہی حال نہیں ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے مجھے نا میری جو بھی کام ہے اس کے اوپر واہ واہ مل جائے، اور یہ لوگ کہیں کہ بس ہاں بھائی واقعی تم ہی ڈیزرو کرتے ہو بہت واقعی، اور اگر کوئی اور نہ کہے تو ہم خود ہی اپنی تعریفیں کرنے میں پیچھے نہیں رہتے. وہ تو لوگ بھی چڑھا دیتے ہیں، جی آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو بس ہاں تو جی ہاں جی ہاں جی تھینک یو تھینک یو، ہاں جی واقعی مطلب تھینک یو کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں نے اس وقت آگے سے ہم منہ سے یہ نہیں بولتے کہ میرا کیا جی کمال، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا، میرا کیا کمال ہے اس کے اندر، ہم آگے سے کہتے ہیں ہاں جی جی آپ میری تعریف کر رہے ہیں تو جی تھینک یو جی ہاں جی، یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تو واقعی تعریف کے قابل ہی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے واقعی میں نے کمال کر ہی دیا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہوئے اپنے منہ میاں مٹھو خود بن جانا، میری علم کی وجہ سے، میرے اس طریقے کی وجہ سے، میری اس پلاننگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں نے اتنا پڑھا جو تھا تو بس، پھر میں نے اتنا پیسہ جو لگایا تھا. حالانکہ ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، جو بھی خیر انسان کو ملتی ہے انسان کو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی دین ہے، یہ نہیں کہ آئی ایم پراؤڈ آف مائی سیلف آئی ایم اے جینیس. اپنی ذات پر اعتماد نہ ہو، اللہ پر اعتماد ہو، اپنی محنت، اپنی قابلیت، اپنی علم، یہ سب چیزیں بھی اگر کسی کے اندر، کسی کے پاس علم ہے یا کوئی محنت کرنے کے قابل ہوا یا کسی اندر کوئی قابلیت آئی گئی تو یہ کس کی طرف سے تھی؟ یہ ماننا ہمیں کیوں مشکل ہوتا ہے کہ اللہ نے کر کے دیا؟ کیوں اس سے ہماری اپنی ذات چھوٹی ہو جاتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اکبر بن جائیں، ہاں ہم کہتے تو ہیں اللہ اکبر ہے، لیکن جگہ جگہ ہم اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں جی فلاں بس ہمارے بزرگ کی، بس ان کی جی نظر کرم ہے اور یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کو تو نہیں کہا جا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور جس وقت کا تمہارے پر مشکل آئی ہوئی تھی تب تو تم نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، تب تو اللہ سے ہی مانگتے ہو، لیکن جس وقت کا تمہارے اوپر نعمتیں آ جاتی ہیں پھر کہتے ہیں ان کا کرم ہے. آپ دیکھیں نا، اور شرک کیا ہے؟ اپنے آپ کو شریک کر دینا یا کسی اور کو شریک کر دینا. اتنی ذہانت، اپنی اتنی فطانت میں ہمیں، اور تکبر کیا چیز ہوتی ہے، اتنا ہمیں اس کے اوپر بھروسہ ہے اور اپنی بڑائی کے اوپر ہمیں اتنا مان ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں ہماری اپنی قابلیتوں سے ملا، اپنے نفس کو خود ہی پوجنے لگتے ہیں. اور تکبر کے بارے میں تو ہے نا، یہ اللہ کی چادر ہے، جو اس کو اللہ سے کھینچے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا. خود کو کبھی کریڈٹ نہ دیں، کیونکہ کوئی چیز یہ نہیں کہ جسٹ اوپر اوپر سے نہیں کہنا، زبان سے نہیں کہنا، دل میں بے شک سوچتے رہیں، یہ نہیں، دل میں ہمارے یہ ہونا چاہیے پھر ہی زبان پہ آئے کہ یہ سب کچھ جو اگر میں کچھ کر رہی ہوں، میں کچھ کرنے کے قابل ہوئی ہوں نا، وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا. اگر میں کوئی کام اچھا ہو گیا میرے سے تو وہ میں نے نہیں کیا، وہ اللہ ہی کرنے والا ہے، نہ تو میری عقل سمجھ کوئی ایسی ہے. آپ دیکھ لیں اچھی بھلی عقلوں سمجھوں والے لوگ اتنے بلنڈرز مار دیتے ہیں کہ کہاں سے کہاں بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں، یا کبھی بالکل ہی زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں، کئی ایسے سٹیپس اٹھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی واپسی نہیں ہوتی. اگر عقلوں سے ہی ساری بات بن رہی ہوتی تو آج زیادہ عقل والے یا زیادہ ڈگریوں والے سب سے دنیا کے کامیاب اور خوش لوگ ہوتے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں آپ دیکھتے. اس لیے کہ سب چیز کرنے والا اللہ ہے، कहीं अकलों से कुछ होता है, ना इल्म से कुछ होता है, किसी चीज से कुछ नहीं होता। अगर इम्तिहान में कामयाबी भी है तो जिस वक्त इम्तिहान होने लगे, आए बस अल्लाह ने करना है, आए अल्लाह करा दे, बस दुआ करो दुआ करो, जब कामयाबी मिल जाए, हाँ जी हमने मेहनत बड़ी की थी, हमने दिन रात, हम मैं तो रात को भी पढ़ती होती थी। तो फिर काबिलियत तो अपनी ही मान ली ना तुमने, अब अल्लाह याद ही नहीं है कि अल्लाह ताला से भी कभी दुआएं की थी। बल ये फितना तुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तो एक आजमाइश है, ये अल्लाह ताला तुम्हें टेस्ट करता है कि अब तुम कहते क्या हो, वो चेक करता है। ठीक है ना, अल्लाह ताला उस वक्त भी देखता है जब तुम्हारे पर तकलीफ है कि अब क्या करते हो, अल्लाह ताला नेमत भी देख के देखता है कि अब बोलते क्या हो, शुक्र अदा करते हो या अपनी तरफ ही निस्बतें करते हो। अब से जब भी हमें कोई चीज मिले, कोई कामयाबी हो, कोई नेमत हो, हमेशा यह बात हमने याद रखनी है कि ये ही हमारे दिल में भी हो, याद रखे दिल में भी हो और जुबान पे भी आए कि ये अल्लाह की रहमत है। क्योंकि नेमत मिलते ही बल ही या फितना, ये आजमाइश है, आजमाइश शुरू हो गई है, याद रखे। अब इसको पाके मैं क्या करती हूं, मैं अल्लाह को ही भूल जाती हूँ, नेमत देने वाले को ही भूल जाती हूँ। वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस बात का इल्म ही नहीं रखते, इस बात का नहीं इल्म रखते कि दुनिया में मिलने वाली नेमतें टेस्ट हैं, ये आजमाइशी हैं। वो इनको इनाम समझते रहते हैं, वो समझते हैं हमें बड़े अच्छे कारनामे किए हैं जो अब हमें ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अल्लाह अकबर। तो औलाद मिले, इम्तिहान में कामयाबी मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कोई पोजीशन मिल जाए, प्रोमोशन हो जाए, बिजनेस में कामयाबी हो जाए, सब चीजें आजमाइश समझें। जब आप उसको आजमाइश समझेंगे और उसके ऊपर अल्लाह के सामने शुक्रगुजार रहेंगे, झुके रहेंगे, तभी वो नेमत आपके लिए बायस खैर बन जाएगी, अदरवाइज वो मुसीबत बन जाएगी। अगर उसने अल्लाह को याद ना किया और अल्लाह के आगे ना झुक के रहे। कद काल हल्लजीना मिन कबलिहिम, तहकीक कहा था इसको इन लोगों ने भी जो इनसे पहले थे, इनसे पहलों ने भी इसी किस्म की बातें कही थी। किस किस्म की? इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, ये तो मेरे इल्म की वजह से मिला। इसमें कारून भी हो गया, इसमें और भी लोग हो गए, उन्होंने सब अपनी काबिलियत ही समझते रहे जो भी उनको मिलता रहा था। जिसके पास दौलत ज्यादा हो गई, उसने कहा मैं बहुत कमाल का इंसान हूं, मैंने देखो इतनी दौलत कमा ली, मैं जी। उसके पास इल्म ज्यादा था, उसने सोच लिया कि मेरे पास इल्म इतना है कि मैं खुदी जहीनी इतना ज्यादा हूं। तो ये पिछले लोगों ने भी कहा था। फिर क्या हुआ? फमा अगना, तो ना काम आया अनहुम, उनको मा कानू यक्सिबून, जो थे वो कमाई करते। फिर देखा था उनका इल्म धरे का धरा ही रह गया। जब उनके ऊपर कोई अजाब आए, अब जैसे कि कारून के ऊपर को अपने खजानों समेत जमीन में धंसा दिया गया, फिर उसकी काबिलियत कहाँ गई थी? वो जो समझता था कि मेरी काबिलियत है जी, मैंने इतना कमाया, फिर कहाँ गई काबिलियत? इसी तरह आप लोगों को देखते हैं दिवालिया हो जाते हैं, फिर उनकी उस वक्त जहानत कहाँ जाती है? पहले वो कह रहे थे कि हमसे ज्यादा जहीन ही कोई नहीं, या फिर जब इन्होंने सजाएं देखी तो फिर कोई चीज ने तो उनको बचाया ही नहीं। इतने जीनियस थे तो अपने आप को बचाते ना। फअसाबहुम सय्यातु, सय्यातु मा कसबू, तो पहुंची उनको सजाएं जो उन्होंने कमाई की, जो उन्होंने कमाया था, जो बातें उन्होंने की थी, जो बुराई उन्होंने की थी, उसके बुरे नताइज उन्होंने भुगते थे। जिसको कहते हैं हम जैसा करोगे वैसा भरोगे। वल्लदीना ज़लमू मिन हाउलाई, और वो लोग जिन्होंने जुल्म किया उन लोगों में से, सयुसीबूम सय्यातु मा कसबू, अनकरीब पहुंचेंगी सजाएं उनको जो उन्होंने कमाई की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी यही बात फरमाई है, जजाउ सय्यातिन सय्यातु मिसलुहा, बुराई की सजा या उसका जो बदला है वो वैसी ही बुराई है, और आप अगर गौर करें सज़ाओं पर, तो वाकई जो सज़ाएं जिस गुनाह की अल्लाह ने रखी हैं वो उस गुनाह से इतनी मुमासलत रखती हैं। मिसाल के तौर पे जो यतीम का माल खाता है वो अपने पेट में आग भर रहा है, तो वो उस दिन आग आग यानी उसके पेट में होगी। जिस चीज़ की जैसी जैसे उसकी शेप है ना उसके गुनाह की, उसी किस्म की उसकी सज़ा है, इवन सज़ा में मुबासलत है। तो ये इनको समझाया जा रहा है कुफारे मक्का को भी कि पहले भी लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने ऐसी बातें की, आज तुम भी अगर ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारा भी वो वैसा ही अंजाम है। और आज के लोगों के लिए भी, हमारे सबके लिए, जो जैसा कर लेगा वैसा भर लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तसल्ली है, या नबी ये लोग अगर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो ज़्यादा देर की बात नहीं है, जल्दी ये अपने करने का मज़ा चखेंगे। नबी के लिए तसल्ली, कुफार को एक मैसेज, और हम सब के लिए भी एक मैसेज। वमा हुम बिमुआजिज़ीन, और वो आजिज़ करने वाले नहीं, यानी अल्लाह को हरा नहीं सकते ये लोग। जैसे सोचते ना हमारे इल्म इतना, हमारा ये इतना, हम इतने इंटेलेक्चुअल्स, हम ऐसे हैं, ये सोचते हैं कि ये अल्लाह ताला के ऊपर गालिब आ सकते, ये अल्लाह को हरा सकते। अवलम या आलमू, क्या वो नहीं जानते, अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इसका मतलब है कि रिस्क का कंट्रोल कहाँ है, अल्लाह के पास। ना हमारे इल्म, ना हमारे कॉन्टैक्ट्स, ना हमारी जॉबों, ना हमारे बिजनेस से कुछ होता है। लोग सोचते हैं कि जी फलां है, उसके पास वो फलां बिजनेस कर रहा है तो इस वजह से, देखा उसने ये बिजनेस कर लिया, कितना अच्छा बिजनेस है उसका, बिजनेस मैन कामयाब है जो इस बिजनेस में हाथ डाल। नहीं, ये वो आता है वो जी वो नौकरी करने वाला, अच्छा देखो वो फलां जगह पे उसने नौकरी की है ना, उसमें बड़ा पैसा है, चलो जी वो सबसे अच्छी जगह है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ से कोई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, क्या कर रहा है। अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, वो जिसका चाहे टाइट कर दे, जिसका चाहे खोल दे। ऐसे ही आपके घर के अंदर पाइप आता है ना बाहर से पानी का, शावर चलाते हैं उसमें से पानी आता है, नलका चलाते हैं उसमें से पानी आता है, फिर आप किचन में चलाएं वहां पे पानी है, बाथरूम चलाएं वहां पानी है। अब ये चीजें आगे देखने वाली डिफरेंट डिफरेंट है, कहीं आपको शावर नजर आ रहा है, कहीं नलका नजर आ रहा है, कहीं कोई और चीज नजर आ रही है, वो चीजें डिफरेंट है लेकिन पीछे एक ही है, सोर्स एक है। किसी को देखें देने वाला अल्लाह है, किसी को दुकान से मिल जाएगा, किसी को नौकरी पे मिल जाएगा, किसी को मजदूरी करने पे मिल जाएगा, किसी को पढ़ाने के ऊपर मिल रहा है, किसी को कोई और फन आता है उसके ऊपर मिल रहा है, देने वाला अल्लाह। इंसान सोचता है मेरी दुकान की वजह से मुझे मिल रहा है, इस कंपनी की वजह से मुझे मिल रहा है, वो तो आगे वो नलका है या वो पाइप जो आगे, या जो वो शावर या वो, उसकी शक्लें डिफरेंट हो सकती, पीछे सोर्स एक है। हम कहते हैं ये पढ़ लिया ना तो इससे ज्यादा पैसे बनेंगे, और ये वाले पढ़ाई कर ली तो इसमें कम पैसा बनेगा। हम कहां से डिसाइड कर सकते हैं, हम नहीं जानते अल्लाह ताला ने किसके नसीब में क्या रिस्क लिखा, और रिस्क किस वक्त लिखा जाता है, जब इंसान माँ के पेट में होता है उस वक्त लिख लिया जाता है। ये मेरे इल्म, ना मेरे टाइटल, ना मेरे स्टेटस, ना मेरी फैमिली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या वो नहीं जानते अल्लाह कुशादा करता है रिस्क जिसका चाहता है, और जिसका चाहता है तंग कर देता है। फिर अगर ये बात के ऊपर ईमान हो जाए तो दूसरों से जेलस होना हम बंद कर दें, यार इसको क्यों इतना मिल गया, अरे उसके पास क्यों इतना पैसा गया, देखा जी वो कितने पैसे वाला है, अल्लाह देने वाला है। तो जब हम उससे जेलस हो रहे हैं तो बेसिकली हम अल्लाह ताला की तकसीम पर नाराज हो रहे हैं कि उसने क्यों उसको दे दिया और मुझे नहीं दिया। तो यहाँ पे बता दिया गया कि तुम जो कह रहे हो ना कि मेरे इल्म से मुझे मिला है, तुम्हारे इल्म से नहीं, ये अल्लाह जिसको चाहे अता करें। इसी वजह से आप देखते हैं कई डिग्रियां लिए फिरते हैं, उनका कुछ भी नहीं बन रहा होता। और कई बेचारे अंगूठा छाप होते हैं, लिखना पढ़ना भी नहीं आता, उनको यही नहीं पता कि हमारे पास कितना पैसा है। इससे हमें अपने इर्द गिर्द देख के ही इस बात का पता चल जाता है, अल्लाह जिसको चाहे अता करे। इन्ना फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमी यूमिनून, ये बेशक इसमें अलबत्ता निशानियां उस कौम के लिए जो ईमान रखती हो। वाकई इसके लिए ईमान जरूरी है, ईमान होगा तो ये बात समझ आएगी कि हाँ अल्लाह ही देने वाला है। जिसका अल्लाह पे ईमान नहीं है वो फिर नौकरियों में और चीजों में तलाश करता रहेगा, डिग्रियों में, कौन सी डिग्री, कौन सी ये, हाँ जी उसकी ये डिग्री है इसलिए उसको मिला हुआ, वो इन्हीं में देखता रहेगा।